आरवी ने अयांश की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। मत सोचो, क्यों ना सोचो, आप ही सोचिए, आपको नहीं लगता वो दोनों साथ आ सकते हैं? आरवी अयांश की तरफ देखते हुए बोली तो अयांश ने उसका चेहरा हाथों में भर लिया। हाँ सकते हैं, बट वो नहीं चाहते वाइफी, एक दूजे को आज भी चाहते हैं वो। हाँ चाहते हैं, पर वो साथ रहना नहीं चाहते। क्यों, क्या क्यों? एक पल रुककर, मॉम की मौजूदगी आज भी डैड की लाइफ में है और मासी अब डैड के साथ नहीं रह सकती बिकॉज उन्हें लगता है उन पर जो भी गलत इल्ज़ाम लगे थे वो सच हो जाएगा। उनका मन उन्हें ये करने की इजाज़त नहीं देता और डैड भी नहीं चाहते फिर से वैसी बात बने, मासी के कैरेक्टर पर सवाल उठे। ये तो गलत है ना मिस्टर मेहरा? गलत सही जो भी है यही है वाइफी, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। डैड मासी का जो डिसीजन है वही होगा, उनकी जिसमें खुशी है वही होगा, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइफी। हाँ मैं उन्हें रोक सकता था, वो हमारे साथ रह सकती थीं, बट उन्हें तकलीफ़ होती। क्या तुम चाहती हो उन्हें तकलीफ़ हो? आरवी ने नामे सिर हिला दिया। तकलीफ़ क्यों होती समझ रही हो ना? जानती हूँ, मासी को क्या डैड को भी होती। यस, बट पहले से अब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है मिल नहीं सकते। अलग अलग रहने से वो खुश रहते हैं और सब ठीक रहता है तो अच्छा है ना? हाँ ये तो है, आरवी हल्का सा मुस्कुरा दी। वाइफी मैं सच में नहीं चाहती मासी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो, जो भी उन्होंने चाहा कभी नहीं हुआ, पर अब हम होने दे सकते हैं, एटलीस्ट अब वैसा हो जैसा वो चाहती हैं। हाँ और इसमें डैड की खुशी भी है, वो भी तो यही चाहते हैं, वो दोनों खुश तो हम सब खुश, राइट? राइट, सो अब तुम ज़्यादा मत सोचो उस बारे में, अगर सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचो, कहते अयांश ने उसके चेहरे पर पकड़ कस ली। आपके बारे में क्या सोचना, बोल आरवी उसके हाथ चेहरे से हटाकर सोफे से उठने लगी कि अयांश ने उसे वापस बिठा लिया और वो उसके करीब आने लगा। सोचकर तो देखो, बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। अयांश को अपने करीब आते देख आरवी की भौहें चढ़ गईं, वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसको रोकते हुए बोली, आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं सोच सकती। वाई, अयांश ने कमर में बाँह फंसाकर उसे करीब खींच लिया। आरवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बिकॉज मुझे अभी और भी ज़रूरी काम है। अयांश पकड़ मजबूत करते हुए बोला, मुझसे ज़रूरी काम है तुम्हारे लिए? आरवी हंसती, आपसे ज़रूरी तो कुछ भी नहीं, पर फिलहाल छोड़िए मुझे, आपके रोमांस के चक्कर में मेरा अर्जेंट काम रह जाएगा। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो छोड़ने को कह रही हो? आश्रम से रिलेटेड, अभी याद आया। छोड़िए ना, अभी याद आना था, जाओ कर लो, कहते अयांश ने पकड़ ढीली की, पर उसी पल फिर पकड़ कस ली। सूखा तो नहीं छोड़ूंगा, बोलते उसने आरवी के दोनों गाल चूम लिए और रिटर्न दो प्यार से बोला। जरूरी है? बहुत जरूरी है, अयांश ने कहा कि आरवी ने उसी पल उसके होठों पर किस कर दी। रिटर्न, आपका फेवरेट, अब छोड़ो। अयांश ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। आरवी अपने होठ सहलाते सोफे से उठी। दाढ़ी है या कांटे, चुभ ही जाते हैं, बोलते बिस्तर की ओर चली गई। उसकी इस बात पर अयांश उसे छेड़ता हुआ बोला, रात को बताऊंगा दाढ़ी है या कांटे। आरवी बिस्तर से अपना फोन उठाकर बाहर की ओर चल दी। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना हम आपकी दाढ़ी के साथ साथ आपको भी साफ कर लेंगे, बोल वो रूम से चली गई। अयांश को हंसी आ गई, मुझे साफ करेगी? अयांश मेहरा को, वैसे कर भी सकती है, बीवी जो ठहरी। राधे किचन में रात के खाने की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं दिनकर जी का रूम आरवी की हंसी से गूंज रहा था। उनके रूम में वो और अनिकेत जी आरवी को अयांश के बचपन की बातें बता रहे थे, कुछ पुराने किस्से सुना रहे थे। तभी अयांश का घर आना हुआ। आरवी की हंसी सुनकर और दादू के कमरे से शोर आता देखकर वो भी वहां चला आया। दिनकर जी बिस्तर पर बैठे थे, एक तरफ उनके अनिकेत जी, दूजी तरफ आरवी। अयांश के आते ही तीनों ने उसकी ओर देखा। अनिकेत जी मुस्कुराते हुए बोले, आ गया बेटा। अयांश, या डैड, दिनकर जी उसे बैठने को बोलते हैं। बैठो अंशु। अयांश बिस्तर पर बैठ गया। क्या हो रहा है? आरवी हंसती, जो भी हो रहा है बड़ा मजेदार हो रहा है, आप भी सुनिए। हाँ तो दादू, आगे क्या हुआ था? दिनकर जी अयांश से, बता दूं? अयांश की भौहें सिकुड़ गई। व्हाट दादू? अनिकेत जी हंस दिए, तुम्हारी पोल खोल रहे हैं बाऊजी, शरारतें मस्तियां होशियारी जो तुम करते थे बता रहे हैं आरवी को। अयांश ने आरवी की तरफ देखा, जिसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि उसे कितने मजे आ रहे हैं, वो कितने मजे ले रही है। तभी आरवी बोली, मुझे नहीं पता था आप ऐसे थे, बट बड़े कूल थे आप तो मिस्टर मेहरा, मेरा मन तो कर रहा है आप फिर से छोटे हो जाओ और मैं आपको देखूं, छोटू मिस्टर मेहरा को, मजा आएगा, कितना अच्छा होगा ना आप फिर छोटे हो जाओ तो। मैं फिर छोटा हो गया तो तुम यहाँ नहीं होगी? अयांश ने जैसे ही ये कहा, दिनकर जी और अनिकेत जी दोनों हंस पड़े। आरवी ने मुंह बनाया, आपसे तो कुछ ना कहो तो ही बेटर है। एनीवेज डैड, बताइए उस गेम में कौन जीता, आप या आपका बेटा? अनिकेत जी अयांश की तरफ देखते हैं तो अयांश बोला, कौन से गेम की बात हो रही है? दिनकर जी, बास्केटबॉल की। अयांश मुस्कुरा दिया और एटीट्यूड वाले लहजे में, मैं जीता था राइट डैड? अनिकेत जी ने हामी भरी। राइट आरवी, रियली? अयांश, ऑफकोर्स वाइफी, दादू के साथ चेस गेम हो या डैड के साथ बास्केटबॉल गेम, हमेशा मैं जीतता था और ये हारते थे। ये सुनकर दिनकर जी और अनिकेत जी उसको घूरने लगे। ये देख अयांश मुस्कुराने लगा, वहीं आरवी तीनों की ओर देख तीनों की बलाएं ले लेती है।
फिर बातों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। कभी दादू का मुंह बनता, कभी अनिकेत जी का, तो कभी अयांश का, और आरवी का तो हंस हंस कर पेट दुखने लगा। उस कमरे का माहौल इतना खुशनुमा और हसीनुमा हो चुका था, उस कमरे में ही नहीं आज तो पूरे मेहरा सदन में रौनक छाई हुई थी। उस कमरे से गूंजती सबकी हंसी पूरे घर में फैल चुकी थी, खुशियों से मानो महक उठा हो मन और घर। अयांश तीनों की तरफ बार बार देख रहा था, हालांकि वो बोल नहीं रहा था ज्यादा, पर उन तीनों को बोलते अपने सामने बैठे देखकर, उनके चेहरों पर खुशी देखकर उसको आज अलग ही सुकून मिल रहा था, जिससे चलती रह रहकर उसके होठों पर मुस्कान आ रही थी, चौड़ी हो रही थी। उसने आरवी की तरफ देखा और मन ही बोला, तुम क्या आई, मेरे घर खुशियों की बहार चली आई, सब पा लिया मैंने, जो खोया था वो भी पा लिया। तभी अयांश ने अयांश की तरफ भौहें उचकाई तो वो नामे सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद अयांश बिस्तर से उठा और आरवी से बोला, सुनो। हाँ। मेरे साथ आओ। क्यों, कुछ काम है? आओ तो सही, बताता हूँ। यहीं बता दो ना, यहाँ नहीं बता सकता, कुछ बात करनी है तुमसे। तुम यहाँ? बात ही करनी है, बाद में कर लेंगे, अभी मैं दादू और डैड से बात कर रही हूँ। आप भी बात जाओ, कितना मजा आ रहा है, अभी एंजॉय करते हैं, बाकी बातें बाद में हो जाएगी। ओके। हाँ तो दादू, वो आगे बोलती अयांश बोल पड़ा, वाइफी। हाँ। आ रही हो? आरवी, दादू, डैड, कहते दिनकर जी और अनिकेत जी की ओर मासूमियत से देखती है कि तभी अयांश फिर से बोल पड़ा, तुम नहीं आओगी तो उठा कर ले जाऊंगा और कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये सुनकर आरवी ने मुंह बनाया और बिस्तर से उतरने लगी, आ रही हूँ, धमकी देने की जरूरत नहीं है। अयांश मुस्कुरा दिया, सीधे से तुम मानती कहाँ हो? आरवी ने उसे घूरा और मुस्कुराते दिनकर जी और अनिकेत जी से बोली, दादू डैड, हम अभी आते हैं अपने पति के साथ जरूरी वार्तालाप करके, पता नहीं कौन सी बात करनी है। अयांश उसकी तरफ आया, करनी है, अकेले में करनी है, अब चलो। बोल उसने आरवी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा, सबसे बातें करने को तैयारी रहती हो, मैं बोलूँ तब पता नहीं क्या हो जाता है। दादू डैड, मैं वापस आऊंगी, तब तक आप सोचो, बातें फिर मुझे बताना, आरवी बोली। अनिकेत जी, सुन लो पहले इसकी बात।
दिनकर जी, हाँ बेटा, आराम से आ जाना। अयांश आरवी को लेकर वहाँ से चला गया। दिनकर जी और अनिकेत जी दोनों एक दूजे की ओर देखते हंस दिए, दोनों समझ गए थे अयांश आरवी को क्यों लेकर गया है। दिनकर जी, अब नहीं आने देगा। अनिकेत जी, पति जो ठहरा ले गया अपनी बीवी को। क्रमशः